आस्तिक रायचंद। अरुणिमा की आंखें बंद थीं और होश एकदम उड़ गए जब उसने सूर्य के मुंह से आस्तिक का नाम सुना। वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है और अपना चेहरा घुमाकर उसने दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश की। सच में आस्तिक दरवाजे पर खड़ा था, ब्लैक कलर के बिजनेस टक्सीडो सूट में और आंखों में दहशत लिए हुए। अपने बड़े बड़े कदमों के साथ किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए वॉशरूम के अंदर दाखिल होता है और अगले ही पल उसने सूरी को अरुणिमा के ऊपर से उठाकर सीधे उसे वॉशरूम के शीशे पर पटक दिया। शीशा टुकड़ों टुकड़ों में पूरे वॉशरूम में फैल जाता है और सूर्य बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन आस्तिक यहां भी नहीं रुका। उसने फर्श पर गिरे हुए सूर्य को कॉलर से पकड़ा और अगले ही पल उसके पेट में जोरदार घूंसा मारा। उसके मुंह से पानी का एक फव्वारा बाहर निकल जाता है। सूर्य की सर्जरी हुई थी, आस्तिक ने पहले भी उसे अधमरी हालत में लाकर रख दिया था और उसके पेट का ऑपरेशन भी हुआ था। आस्तिक ने दोबारा से वहीं पर हमला किया था जिसकी वजह से सूर्य एक ही बार में फेल हो गया। अरुणिमा फर्श पर बैठ जाती है और घबराई हुई हालत में वो सामने की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में डर उतर आया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी शर्ट को थाम रखा था और वो आस्तिक को सूर्य को मारते हुए देख रही थी। उसकी नज़रें आस्तिक के ऊपर थीं। एक साल हो गया था उसने आस्तिक को नहीं देखा था। आखिरी मुलाकात के बाद आज उसने आस्तिक को देखा है। इस एक साल में उसने आस्तिक की तस्वीर तक नहीं देखी क्योंकि आस्तिक कहीं सोशल मीडिया या किसी बड़े न्यूज़ चैनल में शामिल ही नहीं हुआ था। पर अरुणिमा ने देखा कि वो पहले से ज़्यादा कठोर हो गया था। उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। क्या उसने अरुणिमा से दूर रहकर डबल जिम करना शुरू कर दिया था? इसके अलावा उसने बियर्ड कब से रखना शुरू कर दी? पहले आस्तिक के बाल छोटे थे लेकिन अब उसने अपने बाल बड़े कर लिए थे और अपने सारे बालों को इकट्ठा करके उसने पीछे की तरफ एक रबर बैंड में लगाया हुआ था। हालांकि ये लुक भी आस्तिक पर अच्छा लग रहा था लेकिन अरुणिमा की नज़रों में आस्तिक का पहला वाला रूप ही सही था, इसलिए आस्तिक को ऐसे देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। आस्तिक पहले वाला आस्तिक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था इस एक साल में वो बहुत ज़्यादा बदल गया है और उसने अपने अंदर पनप रहे शैतान को और ज़्यादा खूंखार बना दिया है। सूर्य पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। आस्तिक बिना रुके उसे लगातार लात घूंसे मारे जा रहा था। वॉशरूम की हर एक चीज सूर्य के ऊपर फेंकी गई थी। आस्तिक ने गुस्से में उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कांपकर उसे कस के दीवार पर पटक दिया। आस्तिक ने उसे दबोचते हुए कहा, साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरना चाहता है, इसीलिए तो तूने ये करने की हिम्मत की ना? लगता है मेरी दहशत कम हो गई है तेरी नज़रों में, पर कोई बात नहीं, जो लोग मुझे डरना बंद कर देते हैं ना, वो लोग सांस लेना भी बंद कर देते हैं। अरुणिमा देख सकती थी कि आस्तिक के चेहरे पर किस हद तक जुनून सवार हो गया था। उसका पूरा शरीर गुस्से में कांपने लगा था। अरुणिमा किसी छोटे बच्चे की तरह दीवार से लगी हुई थी। अचानक से उसे हिचकी आने लगी और वो तेजी से रोने लगी। आस्तिक का ध्यान अरुणिमा की तरफ जाता है और वो एक झटके से पलटकर पीछे अरुणिमा को देखता है जो दीवार से लगी हुई नीचे जमीन पर बैठी थी और अपनी शर्ट को अपने दोनों हाथों से थामे हुए वो आस्तिक को हैरानी से देख रही थी। आस्तिक और अरुणिमा की नजरें मिली थी लेकिन नजरों में कहीं पर भी वो बात नहीं थी जो अरुणिमा ने सोची थी। आस्तिक की नजरें गुस्से और जुनून से भरी हुई थी। तभी दरवाजे पर निशांत आता है और वहां का नजारा देखकर एकदम से चौंक जाता है। वो गॉड, अरुणिमा! निशांत जल्दी से अपना कोट उतारते हुए बाथरूम के अंदर जाता है और अरुणिमा के पास बैठकर उसने अरुणिमा के शोल्डर पर अपना कोट रख दिया। उसने अरुणिमा को पूरी तरह से ढक दिया और उसे संभाल कर खड़ा किया, लेकिन अरुणिमा की नजरें आस्तिक के ऊपर ही थीं और आस्तिक के दोनों हाथ सूर्य के गिरेबान में थे। निशांत ने जब आस्तिक को देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और वो हैरानी से वहां देख रहा था। आस्तिक को भी काफी चोट लगी थी लेकिन उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके थे। वो लगातार सूर्य को मारे जा रहा था और सूर्य की हालत तो ऐसी थी कि उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं आ रही थी। निशांत खंभाकर आस्तिक से कहता है, मिस्टर रायचंद, क्या है ये सब? आप क्या करने जा रहे हैं? आस्तिक ने गुस्से में सूर्य के गिरेबान को कसकर पकड़ा और लगभग उसका गला घोटते हुए कहा, वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वो सूर्य को बाथरूम से बाहर की तरफ ले जाने वाला था लेकिन निशांत जल्दी से सामने आ जाता है और आस्तिक को रोकते हुए कहता है, मिस्टर रायचंद, ठंडे दिमाग से काम लीजिए, जल्दबाजी में कोई बेवकूफी भरा कदम मत उठाइएगा। बाहर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। अपने लिए ना सही, कम से कम अरुणिमा के लिए ही सही। आप भी ऐसा मत कीजिएगा जो अरुणिमा को लोगों की नजरों में गिरा दे। लेकिन आस्तिक की पकड़ सूर्य के गिरेबान से नहीं हटी। उसने एक नजर अरुणिमा को देखा जो अभी भी अपनी आंखों में आंसू डर लिए आस्तिक को देख रही थी। उसके बाद आस्तिक की नजरें अरुणिमा के फटे हुए कपड़े पर जाती हैं और वो गुस्से में निशांत को देखते हुए बस इतना कहता है, टेक केयर हिम। और उसके बाद आस्तिक सूर्य को लेकर वॉशरूम से निकल जाता है। वॉशरूम में सिर्फ अरुणिमा और निशांत ही थे। निशांत ने एक नजर अरुणिमा को देखा तो उसने आस्तिक के पीछे जाने का ख्याल छोड़ दिया। वो अरुणिमा के पास आते हुए कहता है, अरुणिमा, तुम ठीक तो हो ना?
अरुणिमा बहुत ज्यादा डर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। आस्तिक किसी आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, और इस बीच उसने पूरे वॉशरूम को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब वो सूर्य को अपने साथ लेकर गया है। वो क्या करने वाला है उसके साथ? क्या वो सूर्य को जान से मार देगा? ऐसे ना जाने कितने ही नेगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। वो एकदम से पैनिक करने लगी थी। वो घबराते हुए निशांत से कहती है, प्लीज आस्तिक को रोको। लेकिन निशांत ने अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं अरुणिमा, मैं उसे रोकने वाला कोई नहीं होता हूँ। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो तुम ही हो। वो मेरे कहने पर नहीं रुकेगा, इसलिए मेरा इस वक्त तुम्हारे साथ होना जरूरी है। निशांत ने जल्दी से अपने असिस्टेंट को फोन किया, जो कि एक फीमेल थी। वो जल्दी से अरुणिमा की कार में जाती है और वहां से अरुणिमा का एक एक्स्ट्रा बिजनेस सूट, जो वो हमेशा अपनी कार में करी करके रखती है, उसे लेकर आ जाती है। निशांत वॉशरूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ था, इसलिए वो बाहर खड़ा था और निशांत की असिस्टेंट अरुणिमा को चेंज करने में मदद कर रही थी। आधे घंटे बाद अरुणिमा निशांत के साथ वापस मीटिंग हॉल की तरफ आती है। हालांकि अब उसका मीटिंग का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो मिस्टर जॉयल से मिलकर बस यहाँ से जाने वाली थी। अरुणिमा ने सामान्य रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबको फिर भी उसके चेहरे पर हल्का से डर नजर आ रहा था। वो चुपचाप से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और उसने अपनी फाइल को अपने हाथों में लेते हुए साकेत से कहा, साकेत मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पर जो भी होगा तुम हैंडल कर लेना, मैं घर वापस जा रही हूँ। साकेत हैरानी से बोला, लेकिन अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? सब ठीक तो है ना? पर अरुणिमा ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम यहाँ मीटिंग देख लेना, मैं मिस्टर जॉयल से मिलकर घर जा रही हूँ। अरुणिमा उठकर सीधे मिस्टर जॉयल के पास आती है। मिस्टर जॉयल भी खड़े होकर अरुणिमा से कहते हैं, क्या बात है मिस मेहरा, सब ठीक तो है ना?
लेकिन अरुणिमा अपनी दबी हुई आवाज में कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मीटिंग साकेत हैंडल कर लेंगे। मिस्टर जॉयल फिक्र जताते हुए कहा, ठीक है आप घर जा सकती हैं, आपकी सेहत पहले है, मीटिंग तो होती रहेगी। अरुणिमा वहां से जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि उन दोनों कुर्सियों में से एक कुर्सी, जो शायद सूर्य के साथ वाली कुर्सी थी, वो अब खाली नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उसमें एक लड़की बैठी हुई है, जिसने ही हाई बना रखा है और उसने भी एक मरून कलर का बिजनेस सूट पहन रखा है। तभी दरवाजा खुलता है और इसी के साथ सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, यहां तक कि मिस्टर जॉयल भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हरी मिस्टर रायचंद, आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरुणिमा एकदम से चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर आस्तिक खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कांच के टुकड़े लगने की वजह से एक खरोंच आ गई थी, जहां से खून निकल रहा था। ओ माई गॉड आस्तिक, क्या हो गया तुम्हें? ये चोट कैसे लगी तुम्हारे चेहरे पर? अरुणिमा देखती है, वो लड़की जो उस कुर्सी पर बैठी हुई थी, वो जल्दी से आगे आती है और अगले ही पल उसने अपने रुमाल से आस्तिक के चेहरे को साफ करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, उसने अपना दूसरा हाथ आस्तिक के कंधे पर रखा हुआ था।